जबरदस्त अभी पिछले दिनों इनकी ग्रैंड ओपनिंग हुई है और इन्होंने इतना अच्छा इसको रिस्पांस मिला है क्योंकि ये नो टैक्स इवेंट था और उन्होंने ये जो ऑफर है इसको भी स्टिल इसको कंटिन्यू किया है। तो अगर आप अभी भी जाते हैं कुछ घर का सामान खरीदना है तो आप नो टैक्स इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। कोई चीज खरीदेंगे कोई टैक्स नहीं, चाहे घर का, बेडरूम का, अपने लिविंग रूम का या फिर अप्लायंसेस कोई खरीदने हैं तो बगैर टैक्स के बेशुमार वहां पे वैरायटी मौजूद है। और ये है ब्रैम्पटन में 547 स्टील्स एवेन्यू, कैनेडी स्टील का इंटरसेक्शन, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस की तरफ से। आप कॉल कर लीजिए, जाइए, वीकेंड भी आ रहा है बस अब परसों, 9052444663, 9052444663, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस का नंबर है। और इसके साथ साथ हमें हेयर मैक्स ने भी तावन दिया है। हेयर मैक्स जो कहते हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप जाइए एक दफा जरूर जाके अपना हियरिंग टेस्ट करवा लीजिएगा, इसकी कोई फीस नहीं है। यहाँ इनके पास हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन मौजूद हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से गाइड भी कर देंगे और इनके पास अल्टीमेट हियरिंग सोल्यूशन है। शराज साहब ने भी हमें तावन दिया है 416-792-8792 हियर मैक्स का नंबर है।
और सर आज हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जनाब डग फोर्ड साहब की, उन्होंने आज एक साल मुकम्मल होने के बाद अपनी जो कैबिनेट है उसमें काफी शफलिंग की है। फाइनेंस मिनिस्टर विक फिडेली, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, उनको डिमोट किया गया है एंड उनको जो है दूसरी उन्होंने मिनिस्ट्रीज दी है। और इसके अलावा साहब डग फोर्ड साहब ने और भी कुछ इसमें से यहाँ पर जिस न्यूज़ को मैं देख रहा था उस न्यूज़ को उन्होंने वहाँ से हटा लिया है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, डग फोर्ड साहब प्रीमियर ऑफ मिनिस्टर एंड अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं ये, और इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेजरी बोर्ड इज पीटर बेथलाफ्री एंड पॉल कैलेंड्रा जो है गवर्नमेंट हाउस लीडर बन गए, रेमन छो जो है ये काफ़ी पुराने यहाँ पर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स एंड एक्सेसिबिलिटी दिया है इनको, स्टीव क्लार्क को मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग दिया है, डग डाउनी को अटॉर्नी जनरल बनाया है। आपको पता है कि मलरूनी जो है वो पहले यहाँ की हमारी मिनिस्टर थी, अब अटॉर्नी जनरल थी, अब उनको हटा के डग डाउनी को दिया गया है। जिल डनलॉप का एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इश्यूज, क्रिस्टीन एलियट को डेप्यूटी प्रीमियर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, और इसके आपको पता है ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पहले भी थी और डेप्यूटी प्रीमियर जो है क्रिस्टीन एलियट, विक फिडेली को मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन एंड ट्रेड एंड चेयर ऑफ कैबिनेट का ओहदा दिया है, और मार्ली फुलर्टन को मिनिस्टर ऑफ लॉन्ग टर्म केयर, अर्नी हार्डमैन को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, सिल्विया जोन्स को सॉलिसिटर जनरल हैं, इसके साथ साथ स्टीवन लेसी ये बैक बेंचर थे इनके, अब इनको फर्स्ट टाइम ये ओहदा दिया गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, लीसा मैकलाउड पहले जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थी उनको हटा के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स का दिया गया है, मॉन्टी मैकनाटन मिनिस्टर ऑफ लेबर हो गए हैं, एंड कैरोलिन मलरूनी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनिस्टर ऑफ फ्रैंकोफोन, कैरोलिन मलरूनी जो थी पहले अटॉर्नी जनरल थी हमारी, रॉड फिलिप्स को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ही इज सपोज टू बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रॉड फिलिप्स को दिया गया है, ये ओहदा पहले विक फिडेली के पास था और ये मिनिस्ट्री, ग्रेग रिकफर्ड को मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड नॉर्दर्न डेवलपमेंट का, रॉस रोमानो को मिनिस्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रभमीत सरकारिया का एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस, लॉरी स्कॉट को मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉड स्मिथ को मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन अफेयर्स एंड किंग किंगा सुरमा को एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लीसा थॉमसन को मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर सर्विसेज एंड माइकल टिबोलो को एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस, बिल वॉकर एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, जॉन याकूबसी को मिनिस्टर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट्री, एंड जेफ यूरिक को मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन एंड पार्क्स। इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں, میں خاص طور سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا کی بات کرتا چلوں, ان میں سے صرف ایک شخص کو جو پرپمیت سرکاریہ ہے, ان کو ایسوسیٹ منسٹر آف اسمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن کا عہدہ دیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی اور میں اس کو صرف ان چار نیشنز کی بات کر رہا ہوں میں, مینس پاکستان, انڈیا, سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش, ان میں سے صرف ایک شخص کو ایسوسیٹ منسٹر کا عہدہ دیا گیا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کچھ ریمن چو جو چائنیز ڈسیڈنٹ سے ہیں, ریمن چو کو منسٹر آف سینئر اینڈ ایکسیسبلٹی کی منسٹری دی ہے, باقی کے سارے اپنے یہاں کے لوکل کینیڈینس ہیں. جو بات لینی ہے آپ سے بات لے لیں, میں نے تو اپنا کہنے کا کہہ دیا. چلیے صاحب, اب چلتے ہیں ہم کچھ پروسیس کے پیغامات کی جانب, کچھ پروسیس کے پیغامات لیتے ہیں, پر ہمیں واپس آئیں گے. 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے.
بزنس رن کرنا مشکل ہے, سو پرنٹر کی پرابلم سے اسے اور مشکل کیوں بنائیں؟ فاسٹر اور اسمارٹر پرنٹ کریں اپنے نئے ایچ پی آفس جیٹ پرو پرنٹر کے ساتھ, اور سبسکرائب کریں ایچ پی انسٹنٹ انک, کینیڈاز اونلی انک سبسکرپشن سروس, جو انک آپ کے گھر پہنچائے ختم ہونے سے پہلے. آج ہی خریدیں نیو ایچ پی آفس جیٹ پرو پرنٹر اور سبسکرائب کریں ایچ پی انسٹنٹ انک اسٹارٹنگ ایٹ 399 a month. وزٹ hp.ca یا اپنے نزدیکی ایچ پی ریٹیلر.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر, پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
T4 Entertainment and Trans 99 Logistics proudly present
The Road Tour Diljit Dosanjh,
co-presented by Trans Expert and Sarai Trucking,
on Saturday, June 22nd at First Ontario Center, Hamilton,
in association with T. Media House, Road Link Express and Friends Furniture.
Tickets are available at Friends Video or Ticketmaster.ca.
For tickets and sponsorship, call 905-799-1234
905-793-1234.
سیل سیل سیل, ونائک فرنیچر مسز ساگا لوکیشن, کہاں 2915 ارجنٹیا روڈ این ایم ایس ساگا, ویسٹرن چرچ ارجنٹیا میجر انٹرسیکشن. اپنی کمیونٹی کا 15 سال پرانا سٹور جہاں پر بیڈ روم سیٹ ملتا ہے 499, کافی ٹیبل 199, میٹرس $99 اونلی. فرنیچر سے ریلیٹڈ کوئی ضرورت ہو پہنچیے 2915 ارجنٹیا روڈ این ایم ایس ساگا. فون نمبر 905-858-2667.
فرنیچر اپنے کسٹمرز دا بڑا ہی خیال رکھتے, فائنانس بھی کر دیندے. اس فرائیڈے سیٹرڈے تے سنڈے دونوں لوکیشن تے زبردست سیل لگ رہی ہے. 74 ڈیون روڈ جا 142 کینیڈی روڈ ساؤتھ برمپٹن. فون کر لو 905-874-7171, 905-874-7171. Anniversary sale at Sodi Furniture.
The biggest cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019. Aapke liye lekar aaye hain cricket ka sabse bada show North America mein. Hum aapko denge latest news, inside and outside updates, match analysis, team and player stats, trivia question, surprise interview and exciting prizes. Dekhiye Match Point rozana raat 9 baje Dr. Adnan ke saath sirf ye awaaz TV par. Facebook ایواز یا پھر ایواز.com.
کینیڈا ڈے کارنیوال. वॉल खुशियां ते जावां दी पावेगा तमाल जिते होंगे मनकीरत औलक शेरी मान कुरनाम पुल्लर राजवीर जवंदा आर नित तनिष्क कौर हिमांशी खुराना रवनीत गगन कोकरी सिंगा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा
पहुंचो ब्रैम्पटन फेयरग्राउंड्स हाईवे 410 मेफील्ड रोड
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन मैपल लीफ अटेम्प्ट वधेरी जानकारी लिए कॉल करो दविंदर तालीवाल जगराज सिद्धू
416-302-3600
एंट्री फ्री मेला फ्री
दांतों को लेके परेशान तो मैं कर देती हूँ आपकी मुश्किल आसान फैमिली डेंटिस्ट्री में एक्सपर्ट डॉक्टर गजाला जैद से मिलिए अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फ्रॉम अमेरिका एक्सट्रीमली पोलाइट एंड कंफर्टेबल विद ऑल एज ग्रुप्स अब बताइए अपना मसला इंग्लिश उर्दू या हिंदी में बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ एट 416-945-1000 416-945-1000 एंड विजिट सीडर ब्रे मेडिकल सेंटर एट 3630 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट स्कार्बरो अपने दांतों का करवाएं इलाज डेंटिस्ट डॉक्टर गजाला के साथ
जी एक दफा फिर प्रोग्राम साजो आवाज में आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं इस वक्त 4:10 हो रहे हैं और 22 डिग्री इस वक्त बाहर टेम्परेचर है आज जुमेरात का दिन हमेशा की तरह हम आपको लेके चलते हैं ऑल द वे टू ऑल डेप्थ सॉल्यूशन जी हां कई दफा हम कर्जे ले लेते हैं यहां पर आसानी से मिल जाते हैं कर्जे क्रेडिट कार्ड घर पहुंच जाते हैं और चीजें इतनी होती हैं कि दिल करता है कि बस लेते ही जाओ और अल्लाह का शुक्र है कि जेब भी इजाजत देती है कभी कभी के जाते हैं और जाके ले आते हैं लेकिन ये कि फिर जब बिल आता है एक दफा तो फिर जरा तोते उड़ जाते हैं कि भाई अब बिल कैसे देंगे और कई दफा फिर नहीं दे पाते और फिर कहते हैं कि चलो अगले महीने फिर अगले और होते होते फिर बात बढ़ जाती है तो अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए और मसाइल ज्यादा हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं हमारे साथ हमारे आपके जाने पहचाने मोहम्मद सदीक साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं आपको गाइड भी कर देंगे और सोल्यूशन भी देंगे तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप
वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक कैसी हैं
जी जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है खैरियत है अक्सर कॉल आती हैं लोग पूछते हैं हम आपका नंबर भी बता देते हैं क्योंकि जाहिर है आप एक्सपर्ट हैं आप जानते हैं गहराई समझते हैं इस चीज़ की तो थोड़ा सा हमें अपनी कंपनी के बारे में बताएं और फिर आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को
जी सर ऑल डेस्टिनेशन में हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं अगर उनका कर्जा चाहे ज्यादा है या छोटा कर्जा है लेकिन मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे होते हैं तो हम उनको उनकी मनी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं क्रेडिट काउंसलिंग करते हैं उनकी और अगर डेट ज्यादा हो तो फिर डेट रिलीफ दिलवाने में उनको हेल्प आउट किया जाता है उनको गाइड करते हैं कौन सा ऑप्शन उनको बेहतर रहेगा और ये चीज कैसे चलेगी आगे कौन से कंसिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ेंगे और मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं चाहे डेट आपका $200 $400 की क्यों नहीं है प्लीज इसको इग्नोर ना करें क्योंकि मैं ये पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लोग ये नहीं कि 1,00,000 एकदम आपके 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 डेट आ जाता है नहीं यही 500 वाला 1,000 पे जाता है 1,000 पे 2 से 10 10 से 20 चलते चलते लाख पे जाता है और उसमें होता ही है कि आधे से ज्यादा आपने इंटरेस्ट पे किया होता है जो आपका पैसा ज्यादा हो चुका होता है और अक्सर लोग जब कॉल करते हैं तो वो मिनिमम मैं कह रहा हूँ $40,000 to $50,000 इंटरेस्ट की सूरत में जाया करके हमें कॉल करते हैं नुकसान एक तो उनका पैसा जाया हो गया दूसरा डेट ज्यादा है तो रिलीफ डेट फ्री होने में टाइम ज्यादा लगेगा मंथली पेमेंट ज्यादा बनेगी स्ट्रगल करेंगे या फिर ऑप्शन ओनली बैंकरप्सी होगा तो इस चीज से बचने के लिए अगर आप इसी चीज को आप सीरियस लें इसमें शुरू से ही तो आप ज्यादा डेट में भी नहीं जाएंगे और सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके ही आपका मसला हल हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब नहीं होगा लेकिन ऑलरेडी अगर आप डेट में जा चुके हैं या मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं तो एक दफा आके मुझसे मिल लें कुछ आपने पे नहीं करना फ्री कंसल्टेशन है प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है मैं खुद आपके साथ बैठूंगा और जो भी आपकी सिचुएशन है वो डिस्कस करें और उसके बाद घर जाके डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस तरह मिनिमम पेमेंट्स को यकीन करें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बाद में क्रेडिट भी खराब होगा
जी और आप ये देखिए सदीक साहब की कई दफा हमें पता ही नहीं होता अब जब चीज पता ही नहीं तो हम क्या करें हम तो फिर कर्जे ही देते जाएंगे ना हम तो फिर इंटरेस्ट ही देंगे लेकिन इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह के एक्सपर्ट को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये गहराई तक आपको लेके जाते हैं और बता सकते हैं कि नहीं उसका सोल्यूशन है आप फोन कीजिए ऑल डेप्थ सोल्यूशन के मोहम्मद सदीक साहब आपसे मुखातिब हैं जी और आगे आप क्या कहेंगे
जी सरत ऐसा है कि हम इस मुल्क में रहते हैं कनाडा में जो कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो यहाँ पे सिर्फ आपने प्रोफेशनल से मिलना होता है और हम आपको इसमें गाइड करते हैं आपको हेल्प आउट करते हैं फिर आपको बताते हैं कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जब भी क्लाइंट कोई मेरे ऑफिस में आता है मैं उनके साथ उनका केस इन डिटेल रिव्यू करके अगर मुझे लगता है कि उनको रिलीफ लेना चाहिए तो बताता हूँ कि ये रिलीफ आपके लिए अवेलेबल है, रिलीफ ले लेंगे, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन बेहतर हो, रिलीफ जिसमें रिलीफ ना हो बल्कि सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके मसला हल हो सकता हो तो उस तरफ एडवाइज करता हूँ। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की सिचुएशन पे और उनके फ्यूचर प्लान्स पे कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, इस टाइम क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या सिचुएशन है, उन्हें वो सब कब लेना है, ये सारी चीजें देखने के बाद मैं उनको एडवाइस करता हूँ। ये नहीं कि बस आया कोई सभी को बैंकरप्सी की तरफ भेज दिया या फिर प्रपोजल की तरफ, नहीं, कई ऑप्शन अवेलेबल हैं और स्पेशली ऑल डेट क्वेश्चन में हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है क्रिएटर के साथ। जब मैं क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो उनको वो ऑप्शन देता हूँ जिसमें मेरे क्लाइंट की बेहतरी हो ना कि क्रिएटर्स की, और फाइल इस तरह तैयार करते हैं कि मेरे क्लाइंट को सबसे ज्यादा रिलीफ मिले ना कि क्रिएटर्स को, और अगर इसमें क्रेडिट हर्ट होता है तो हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में, उनको बताते हैं कि कैसे क्रेडिट बिल्ड करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं, अगर उस पर आप अमल करते हैं तो आपको बिल्कुल 7-8 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा क्रेडिट लेने में, बहुत जल्द आपको क्रेडिट भी वापस मिल सकता है। नंबर है 416-671-0577 और डेट चाहे आपका क्रेडिट कार्ड्स का है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं, इनकम टैक्स है पर्सनल या बिजनेस का जीएसटी है, बिजनेस का लोन है या स्पॉन्सरशिप डेट आ गया आप पे, किसी किस्म का भी अनसिक्योर्ड कर्जे से आप निजात हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये ना देखें कि मैं गवर्नमेंट को ओ करता हूँ तो उसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नहीं, बिल्कुल आप उस गवर्नमेंट का डेट जो इनकम टैक्स का है या जीएसटी का है या स्पॉन्सरशिप डेट है उसका भी आप रिलीफ आपको रिलीफ उसके लिए भी मिल सकता है, और हम आपको गाइड करते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर रहेगा। नंबर है 416-671-0577
416-671-0577 पर आप रापता कर सकते हैं। और आपके ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, जैसे अगर किसी ने पहुँचना हो दूर से तो?
जी सर, हमारी लोकेशन स्काबो में है, मार्फा में अलजमर के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है किपलिंग और रेक्सटल के पास, मिसागा में है टॉमकिन डंडास के पास, ब्रैम्पटन में है डिक्सी और ब्रिवेड के पास। जो भी लोकेशन आपको नजदीक पड़ती है मुझे आप कॉल करके अपॉइंट बुक कर सकते हैं, जो भी आप सिचुएशन है वो डिस्कस करें, घर बैठे प्लीज मत डिसाइड करें कि आपके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप घर बैठे डिसाइड कर लेंगे तो शायद आपके पास सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपका नुकसान होगा, पैसा भी जाया होगा और बाद में क्रेडिट भी खराब होगा, इसलिए कॉल करें। नंबर है 416-671-0577 पे।
ऑल डेप सॉल्यूशन के मोहम्मद सदीक साहब से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, 416-671-0577। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और इसी तरह प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि मेगा मनी एक्सचेंज का जो कि अगर आपने पैसे भिजवाने हो, मंगवाने हो, तो एक बहुत ही रिलायबल और एक क्विक सर्विस है जो कि आपका ट्रांसफर जो है वो आपके प्यारों तक पहुंचा देती है। हमेशा की तरह आज का रेट मेगा मनी एक्सचेंज का 116 रुपए 50 पैसे है, 116 रुपए 50 पैसे। और आप इनसे मिलिए, सबाह साहब से साजो आवाज का हवाला दीजिए, तो आपको डेफिनेटली जरूर केयर किया जाएगा, ना सिर्फ पैसे बल्कि अगर आपने कोई भी गिफ्ट भिजवाना हो, फ्लावर्स भिजवाने हो, मिठाई, केक, यू नेम इट, तो आप जरा थोड़ा पहले कांटेक्ट कर लीजिए मेगा मनी एक्सचेंज, जिनका नंबर है 905, मेगा मनी एक्सचेंज का नंबर है 90527, इस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 8748446 है, 905 9025 279 4754
मेगा मनी एक्सचेंज का फोन नंबर है। सर्व जी, इसके अलावा हलाल फूड फेस्टिवल आ रहा है, खाने पीने की बातें, गुलगुले खाएं जी। हलाल फूड फेस्टिवल आ रहा है टोरंटो में 20 और 21 जुलाई। मैंने कहा था 20 और 21 जुलाई, तो आज 20 और 21 जुलाई को आ रहा है साहब, एक महीना रह गया है। 20 और 21 जुलाई को ये एज यूजुअल एयरपोर्ट और डेरी के इंटरसेक्शन पर द इंटरनेशनल सेंटर जो है उसमें आएगा, और पूरी दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने यहाँ मौजूद होंगे, ऑल हलाल। एंड यहाँ पर अमेरिका से भी लोग आते हैं साहब, क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हलाल फूड फेस्टिवल। तो हलाल फूड फेस्टिवल 20 और 21 जुलाई को, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपने स्टॉल लगाना हो तो आप बात कर लें अरशद कुरैशी से, अरशद कुरैशी का फ़ोन नंबर है 647 647-286-5727 इनका फोन नंबर है।
और माज भाई ये जो एग्जीक्यूटिव टाउन होम्स आए हुए हैं ये जबरदस्त एक इसको अपॉर्चुनिटी नाम इस कीजिएगा, क्योंकि ये जो ओपन हाउस है ये आज लगा हुआ है। हम दो तीन दिनों से अनाउंस करते चले आ रहे थे नायग्रा फॉल्स में ये उसके आसपास का इलाका है, तो जरूर जाइएगा अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने लिए लेना है या अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं, रेंटल देना है क्योंकि यहाँ रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी और 2020 में जाके आपको ये मिलेंगे और प्राइस बहुत अच्छी है कि 399,900 से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है और इसमें रेयर गैरेज है, लेन गैरेज है या अटैच गैरेज है, तो थोड़े से यूनिट्स हैं, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आपने अगर दो बेड थ्री बेडरूम का अगर आपने टाउन हाउस बुक करवाना है एग्जैक्टिव, और ये फ्रेंच स्टाइल में है, वेलनेंट जगह है, आप जरूर जाइएगा। और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं देल मुंडी को 416-313-1313 पर राबता कर लीजिएगा, 416-313-1313 पर आपने राबता करना है।
चलिए एक खूबसूरत गीत की तरफ चलते हैं और उसके फौरी बाद हम कोशिश करेंगे हम आपकी मुलाकात करवाएं जनाब कावन नईम हाशमी से, और ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है असद अमानत अली खान की आवाज़ में, समाप्त फरमाइए 416-620-1778। मैं आपको इसके बोल बता रहा था मगर मुझे छींक आ रही है तो
बोल के लब आजाद कर दे रहे
तो बोल नहीं बताऊंगा मैं आपको, मुझे मेरी छींक फंसी गई है आपको ऑफ एयर जाती है मेरे छींकना है तो आप इतनी देर में आप समाप्त फरमाइए असद अमानत अली की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है।
जवा हमें बदल में आ दिखा है मैंने आज नई जिंदगी का साथ सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब हाँ बजर है आप और होश है सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब हाँ बजर है आप
बेटे की शादी की तारीख पक्की हो गई है और कोई शादी हॉल ही नहीं मिल रहा।
अच्छा देखते हैं।
मैंने तो अपने बेटे की शादी उसी हॉल में करानी है।
अरे भाई किस हॉल में?
वही हॉल जहां अहमद साहब के बेटे की शादी हुई थी। याद है वेन्यू भी जबरदस्त था और खाना सबने कितना पसंद किया था।
अच्छा आप कैपिटल बैंक्वेट सेंटर की बात कर रही हैं?
हाँ हाँ कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड पर। किसी भी तकरीब या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एक ही नाम कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड इन मिसिसागा 9056700635 9056700635।
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसी तजर्बा लिए हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल शानदार इंटीरियर लार्ज हॉल्स स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। वुडबाइन बैंक्वेट हॉल 30 Vice Regent Boulevard टोरंटो। बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए अभी कॉल करें 416-743-0003।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
Dreams helped make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
जी हाँ ये है Dream Convention Center जिनके पास है 3 शानदार ballrooms, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, high quality international cuisine, state of the art, audio visuals, event coordination, highly trained staff, खास दिन को बनाए यादगार Dream Convention Center के साथ, online booking या फिर आ जाएं Dream Convention Center 75 Hedgedale Road, Brampton 9054515100 9054515100।
सब के लिए एक खास ऐलान, अब पाकिस्तान जाए बगैर होगा काम, शादी हो पार्टी हो या लेना हो फॉर्मल वेयर, तो एक ही नाम शिफॉन ब्राइडल कटोर। गेट 30% ऑफ ऑन ऑल ब्राइडल कलेक्शन एंड अप टू 50% ऑफ इफ यू गेट अ ब्राइडल एंड अ मेहंदी और मायो ड्रेस, एन अमेजिंग डिस्काउंट ओनली टिल दिस दिसंबर। बुक कीजिए अपॉइंटमेंट अस्मा अजमल के साथ एट 6478664274 6478664274। शिफॉन ब्राइडल कटोर एट 8 इंपीरियल लेक्स ड्राइव ब्रैम्पटन।
Lasagne Grill, halal Pakistani cuisine, taste that makes the difference.
Cozy atmosphere, friendly service ke saath richness of food. Chahe dil kar raha ho kadahi, barbecue, wraps, chicken, beef, lamb ya phir vegetarian specialities.
Friday, Saturday, Sunday, full weekend special buffet.
Pursukoon mahal aur ho mazedar khane to aur kahan hai jana?
Lasagne Grill, 259 Kingston Road East in Ajax, 905-239-678.
जी साहब करा, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज। 4:29 और लीजिए साहब 4:30 और 2 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर सरवत जी मौजूद हैं और सरवत जी की मौजूदगी में फिर यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम जारी है। और
माजिद भाई मजा आ गया जो आपने 3 बजे के बाद से, उसके बाद पहले हम बारिश में, उसके बाद फिर पुरानी यादें, और उसके बाद जिस गजल ने तो आज बैटरी जो है ना वो फुली चार्ज कर दी है।
फुली चार्ज हो गई है,
फुल चार्ज हो।
चलिए सही है, अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो गई है तो ये अच्छी बात है। और चार्ज करने के लिए ना सियासत की बातें करेंगे।
हमने सबको चार्ज किया,
जितनी बैटरी नई चार्ज है ना, तो वो बैटरी के लिए हम लेके आए हैं पाकिस्तान से जनाब वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब कावर नईम हाशमी को, जिन जिनकी बैटरी लो है ना अब वो सारी बैटरी चार्ज हो जाएंगी।
लेकिन माजिद भाई कुछ लोगों की सियासत से चार्ज होती है, कुछ लोगों की खेलों से चार्ज होती है, हम जैसे म्यूजिक से ही चार्ज हो जाते हैं।
नहीं नहीं, मगर ज्यादातर जो आवाम है ना यहाँ पर वो ज्यादातर चार्ज होते हैं कावर नईम हाशमी से, क्योंकि कावर नईम हाशमी से आप जो बातें करते हैं ना
तो भाई चालू बहुत होते
वो कॉल ही नहीं थमती हमारी तो
तो इसलिए देखिए अभी अभी हमने बात शुरू नहीं की है कि हमारे कॉलर शुरू हो गए आना, तो इसलिए हम कॉलर से कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि अभी जनाब कावर नईम हाशमी साहब बड़ी अच्छी अच्छी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें आपको सुनवाएंगे, जिसमें हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तरफ से अल अजीजिया रेफरेंस में 7-7 साल कैद की सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, इसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब हुकूमत के साबिक वजीर खजाना असद उमर भी कौमी असम्बली में महंगाई के खिलाफ फट पड़े ज़्यादा बेहतर है। आसिफ जरदारी ने अपनी गिरफ्तारी को आवाम के खौफ से जोड़ डाला और बरतानिया में इसहाक डार को पाकिस्तान के हवाले करने से क्यों गुरेजा है, और हैदराबाद में ट्रेन हादसे की वजह सामने आ गई और पाकिस्तान में पुलिस एहलकार रातों में क्या करते हैं, ये सब मेरा ख्याल है तो रातों को सोते ही होंगे बेचारे, पूरे दिन इतने काम करके थक जाते हैं वो तो रात को सोते होंगे वो। सुप्रीम कोर्ट का खौफनाक इंकशाफ, ये सारी चीज़ें सरवत हम बात करेंगे जनाब कावर नईम हाशमी साहब से। मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं जनाब कावर नईम हाशमी साहब,
ये भी तो रात में ही जागते हैं।
हाँ, अभी एक और टॉपिक लेके आएंगे हम,
अच्छा
एक और टॉपिक लेके आएंगे एक दिन के, आप बताइए कि कावर नईम हाशमी रात को क्या करते हैं। कावर नईम हाशमी साहब वेलकम करता हूँ आपको रेडियो साजो आवाज पे, कैसे हैं साहब? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप बड़े जॉली मूड में हैं तो मैं ऐसे हूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पास जाने से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों ना चले।
जी जी, आप सुप्रीम कोर्ट में चले सर,
रातों को जागने का मामला क्या है?
जी जी जी,
क्योंकि ये इतलात तो मेरे पास भी है कि सोते आप भी नहीं है। आपकी शायरी वायरी जो रात को करते हैं उसकी भी इतलात है यहाँ पाकिस्तान में है।
अच्छा अच्छा, 6 घंटे प्रोग्राम करने के बाद साहब बड़े बेबी की तरह आराम से सोते हैं हम।
हाँ शायरी करते हैं भाई,
शायरी भी करेंगे सर, शायरी भी करेंगे। आप बताइए कि
बहुत करते हैं
कि रातों को ये पुलिस वाले क्या करते हैं सर?
ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि भाई ये जो है ट्रैफिक पुलिस वार्डन जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं कि भाई के कोई कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए।
जी
तो इनकी तनख्वाहें तो बड़ी मकबूल है, ये तो पहले ही बड़ी दो नंबरियां करते हैं, इनके जो अफसर है वो दफ्तरों में बैठ के आराम करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पुलिस एहलकार जो है ज्यादातर, ये उन्होंने कहा कि मैं हम सब पुलिस एहलकारों के बारे में नहीं कह रहे, ज्यादातर पाकिस्तान में जो पुलिस एहलकार है वो दिन के वक्त ड्यूटी देते हैं और रात को डाके मारते हैं, डकैतियां करते हैं लोगों के घरों में।
ओहो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये?
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने।
अच्छा,
रिमार्क्स है जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के,
ओहो,
इस केस में ये रिमार्क्स है। तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहे पाकिस्तानी कैनेडा में बैठे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हों या खुद पाकिस्तान में हों, और हम खुद भी जो है रोजाना कई लोगों के फोन सुनते हैं
कि किस तरह लोगों को बिला वजह जो है वो थानों में ले जाया जाता है। थाना कल्चर जो है इसको तब्दील करना ये जो है किसी के बस में नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे ये पाकिस्तान की पुलिस जो है वो पिछले 70 साल से हुकूमतों की अलाहकार के तौर पे काम करती रही है। ये जागीरों वडेरों सरमायादारों सनतकारों की पुलिस रही है और पाकिस्तान के जो आवाम है ये अगर इनके लिए कोई चीज पाकिस्तान में खौफ की अलामत है तो वो पुलिस है। तो वो चार दिन भूखा रह सकते हैं लेकिन पुलिस का अपने घर में आना जो है वो उनको वैसे ही जो उनकी सांसें जो है वो बंद कर देता है और कोई पता नहीं होता कि किस राह चलते हुए पैदल आदमी को किस मोटरसाइकिल वाले को किस गाड़ी वाले को कहाँ रोक दिया जाए और कहाँ उसके साथ कौन सा सलूक हो। तो ये बहरहाल ये एक हकीकत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हकीकत पर एक मेरे ख्याल में बिल्कुल सही अवामी नुमाइंदगी की है और सही बताया है क्योंकि ये समझा जाता है कि बहुत सारे जो क्राइम्स पाकिस्तान में होते हैं ये सिर्फ डकैतियां ही नहीं बल्कि अगवा अपराध तवान के केसेस तक जो हैं और ये जाना और बहुत सारे ऐसे जो जराइम होते हैं इसके पीछे जो या बरायदाफी ये खुद होते हैं या इनके पीछे इनके एजेंट होते हैं। क्योंकि हमने बेशुमार दफा देखा है कि सैकड़ों गाड़ियां चोरी होती हैं किसी का सुराग नहीं मिलता दोबारा उस मुकदमे को देखा भी नहीं जाता लेकिन जब इनका कोई आईजी या कोई बहुत ताकतवर आदमी किसी को वार्निंग दे दे तो मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी चाहिए तो 24 घंटे तो दूर की बात है 6 घंटों के अंदर अंदर गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं से बरामद हो जाती है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह तो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सर्वत मगर इसका कोई उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस तो इसका कोई उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है कि किस तरीके से ये चीज खत्म कर सकते हैं।
जी ये सोल्यूशन जो है ये पिछले साबित चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस निसार साकिब साहब भी और मौजूदा जस्टिस खोसा साहब भी ये खुद भी ये सोल्यूशन दे चुके हैं कि पुलिस का जो सिस्टम है निजाम में रिफॉर्म होनी चाहिए। इसके अलावा तरीकेकार कोई नहीं है क्योंकि ये जो पुलिस में लोग भर्ती होते हैं ये होते ही इसलिए है कि ये माल कमाए लोगों को तंग करें हुकूमत करें अवाम को ये महकूम समझते हैं। ये जो यहाँ पर कई फोर्सेस बनी हुई है लोगों की हिफाजत के लिए जो सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर बड़े साइज की मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं तो जब ये गुजरते हैं सड़कों से तो लोग सहम जाते हैं लोग इनको अपने रखवाला नहीं समझते क्योंकि ये किसी को किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं किसी को भी ये गोली मार सकते हैं। ये मेरा ख्याल में गोली मारने का वाकया तो पिछले 24 घंटों में भी एक वाकया जो है वो पेश आ गया है कि वो हाँ ये कल रात का ही वाकया है कि मोटरसाइकिल वालों को रोका जाता है तो अगर कोई खौफजदा बेचारा रुके ना या रुकते हुए देर हो जाए तो एकदम गोलियां चला दी जाती हैं। और कल भी मैं देख रहा था कि टेलीविजन पे एक माँ जो है वो बहुत बैन कर रही थी कि इसकी गोली जो है मेरे बेटे की टांग में लगी है तो अगर ये पीछे सीने में लग जाती या किसी और जगह पे लग सकती इसकी डेथ भी हो सकती थी। तो इस तरह कई वाकयात मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं कि पुलिस की इस जो नेग्लिजेंस है इस वजह से बेशुमार बच्चे जो है वो मारे गए हैं और कभी आज तक पाकिस्तान में किसी जुर्म पर किसी पुलिस एहलकार को सजा भी नहीं हुई। ये भी एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चले हम नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद
चले नवाज शरीफ की तरफ चलते हैं
जी। नवाज शरीफ साहब के पे रहम करे आप लोग आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई। तीन बार वजीर आजम रह चुके हैं
हम बड़ी इज्जत करते हैं साहब हमारे तीन दफा वजीर आजम रह चुके हैं बाइज्जत आदमी
और कोई पता नहीं उनका कोई गुस्से में आ गया तो फिर आपको पता ना उनके गुस्से का।
अच्छा
बहुत गुस्से भरा आदमी है।
अच्छा
तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाजह कर दिया है जी दूसरी बार वाजह कर दिया है शरीफ खानदान पे तो नवाज शरीफ को रिहा नहीं किया जा सकता।
अच्छा
हाँ इनको वाजह कर नवाज शरीफ को रिहा नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ ने 7 साल इनको सजा हुई थी अलाजीजिया रेफरेंस में तो अब इन्होंने दूसरी बार हाईकोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी कि उनकी जो 7 साल की कैद है उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे मुअत्तल सस्पेंड कर दिया जाए। तो उसके लिए दलाइल दिए गए कि जनाब इनके वकील ने कहा कि नवाज शरीफ चीफ साहब जो है वो जेल के अंदर बहुत स्ट्रेस में है। तो फिर वो उनसे अदालत ने पूछा कि ये अकेला नवाज शरीफ ही जेल में स्ट्रेस में है या बाकी कैदी भी स्ट्रेस में है। तो फिर उनका कहना, उनके वकील का जवाब, उनको घूमने फिरने की भी आजादी नहीं है, तो उनको इलाज जो है, उनके बहुत सारे डॉक्टर कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल उन्हें कह दिया गया है कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत उन्हें नहीं मिल सकती, पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। और ये भी अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इतने काबिल है कि ये बैरूनी मुल्कों में भी इलाज करने के लिए बुलवाए जाते हैं।
सही।
तो बहरहाल इस पर नवाज शरीफ साहब का पार्टी का और उनकी साहबजादी का रद्द अमल भी सामने आया है। और जब कभी इनके हक में कोई चीज आती है किसी भी सियासतदान के, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, तो अदालतें जो है वो गैर जानबदार होती हैं, लेकिन आज मरियम नवाज का जो रद्द अमल है वो भी सख्त है कि मेरे बाप पर इंसाफ के सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मेरे बाप पर इंसाफ के सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ये एक रद्द अमल है मेरे ख्याल में। तो जो अदालतों को शायद जानबदार करार देने की ये कोशिश मुझे लगती है कि इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो बात हम कर रहे थे तहरीक इंसाफ के सबक वजीर खजाना जनाब असद उमर साहब की, कि आज उन्होंने अजीब गरीब तरीके से तकरीर की है कौमी असम्बली में। तो आज आपको पता है ये पहले हमारे वजीर खजाना थे और पाकिस्तान की जो मौजूदा इक्तसादी पॉलिसियां हैं और इन पॉलिसियों को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ये बड़े सरगर्म थे। और जो मौजूदा महंगाई की लहर आई थी ये इन्हीं के दौर में शुरू हुई थी और उसके बाद इनको वजारत से हटाकर दूसरी वजारत देने की कोशिश की गई जो इन्होंने कबूल नहीं की। और इनकी जगह जो है वो वजीर की बजाय मुशीर खजाना रखा गया जनाब हफीज शेख साहब को।
सही।
तो आज उन्होंने अपनी हुकूमत के दरस्ते हुए खास तौर पर दो तीन चीजों का नाम लिया। तो पाकिस्तान में हर चीज महंगी हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज जो डॉलर का रेट है वो मेरा ख्याल 157 था, हाँ 157 है। और जो गोल्ड है वो तो आपके भी बड़ा है, वो आपको पता होगा, यहाँ भी वो 76-77 तक पहुंच गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान में ये एक खुशखबरी है कि आज भी पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन रही है आज के दिन में।
शुक्र।
तो इनका जो कहना था वो ये है कि ये इन्होंने चीनी को टारगेट किया है, तो ये कहते चीनी पर टैक्स क्यों बढ़ाया गया है और चीनी पर जो टैक्स लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। और चीनी की महंगाई जो है वो कुछ साजिश इन्होंने करार दी है और ये कहा है कि चीनी की महंगाई क्यों हुई इसके लिए तहकीकात कराई जाए।
तो मतलब इनका कोई चीनी से इनका चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक है या इनका कोई ऐसा काम है जिसमें,
चूंकि मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो मेरा ख्याल है उनकी शुगर मिले चुके हैं, तो जहांगीर तरीन को टारगेट किया हो।
अच्छा,
इनका ख्याल है कि इनकी जो वजारत इनसे छीनी गई है वो शायद जहांगीर तरीन की मुशावरत से छीनी गई थी। तो बहरहाल चीनी को इन्होंने टारगेट किया और भी बातें इन्होंने की कि खुर्दनी तेल वगैरह जो है, घी की कीमतें, उन पर भी टैक्स जो है मुनासिब नहीं है। छोटी गाड़ियां जो है उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाई गई है, उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। खाद का भी जिक्र किया है कि खाद की कीमतों में इजाफा वापस होना चाहिए। यूरिया खाद की फी बोरी में इन्होंने 400 रुपए सस्ती करने का भी मुतालबा किया है। तो बहरहाल ये उस इक्तसादी टीम के मेंबर थे जिसने ये सारा कुछ किया है। तो आज इन्होंने कौमी असम्बली में ये मुतालबात जो है वो पेश किए। तो महंगाई जो है ये इन्होंने ये भी एतराफ किया कि भाई महंगाई का दिन जो है ये जो सारा कुछ महंगा हुआ ये आई एम की सिफारिशात की बुनियाद पे हुआ है। तो बहरहाल चीनी को टारगेट बनाना, सिर्फ चीनी को टारगेट बनाना इनकी पूरी तकरीर को जो है वो टारगेट मशकूक बनाता है।
सही।
तो आसिम जरदारी साहब भी आज जो है वो कौमी असम्बली में बहुत गूंजे हैं, तो मुझे समझ नहीं आई उन्होंने वो क्या बयान किया। एक तरफ तो ये है कि जो अपोजिशन जमाते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी क्यादत बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं और जरदारी साहब जेल में है, आज प्रोडक्शन ऑर्डर पे जरदारी साहब गए थे कौमी असम्बली में, उन्होंने खिताब किया, इनकी बेटियां भी वहां कौमी असम्बली में नजर आई हमें, तो उनका उनका जो खिताब था वो ये था कि एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, एमक्यूएम और जो खुद इतिहादी जमात है और अख्तर मैंगल ये इकट्ठे बैठते हैं और इनका ख्याल है कि ये हुकूमत के खिलाफ कह रही और एमक्यूएम भी जो है वो इनका साथ दिया है प्रोडक्शन ऑर्डर की हद तक, तो एमक्यूएम भी गई है कि जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर होने चाहिए और जिसके बुनियाद पे आज वो सामने आए। तो इनका कहना है कि इन्होंने मुफामाना रवैया जो है वो असेंबली में इख्तियार किया है कि एक तरफ तो जिसकी क्यादत में चल रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे जो है ये मरियम नवाज को भी और बिलावल भुट्टो को भी और कहा था कि ये इनकी क्यादत करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने मुआसरे का और इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दी है कि इसको लॉकडाउन कर दिया जाएगा इस्लामाबाद को, लेकिन आज ये जो खुद फरमा रहे हैं कि हम का हिसाब किताब बंद कर दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के श्री चेयरमैन हरी साहब ने कौमी असम्बली में फरमाया है कि हुकूमत और अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे का हिसाब किताब बंद कर दें। लोग हाँ और ये जो हम सब जो है वो मिलकर आगे बढ़े और तरक्की के लिए इक्तसादी पॉलिसियों पर बात करें और एक मुस्तकिल इक्तसादी निजाम जो है उसको वाजह करें, तो ये इनकी मुफामाना एक खिताब था।
ये बात तो उन्होंने सही की है सर,
बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है उन्होंने, उनका ये भी हाँ बात तो उनकी दुरुस्त है, होना तो यही चाहिए। और आज पाकिस्तान में आम आदमी भी यही कह रहा है, शुरू शुरू में तो ख्याल था कि एकदम जो है वो एहतसाब होगा और सारे चोर पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे, और अब एक साल में जो एहतसाब की सूरत हाल नजर आई है और तरक्याती मामलात में जो हम सिफर हैं, तो आज इन सारे हालात में बात तो दुरुस्त है कि सबको मिलजुल के मामलात जो है देखने चाहिए कि कौम कहाँ खड़ी है, हम कहाँ पहुंचा चुके हैं इस कौम को इक्तसादी शोबे में खास तौर पे उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। तो इनकी एक फिक्रा बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि आम आदमी परेशान है, आम आदमी इसलिए परेशान है कि भाई अगर जरदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो उनका क्या बनेगा।
सही
बिल्कुल,
यानी कि उनका ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है वो खुद अपने बारे में परेशान हो गए हैं। तो बहरहाल ये फिक्र उन्होंने क्यों बोला कैसे बोला, वो एक बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा है,
मगर आम आदमी भाई जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा हो या पाकिस्तान से बाहर रह रहा हो, पाकिस्तान की उसके पास अगर शरीयत है और उसने कोई काम गलत किया होगा तो उसको तो परेशान होना ही पड़ेगा, मगर गलत काम नहीं किया तो मुझ जैसा आप जैसा आदमी तो कहते यार कि कोई भी कानून ले आए हमें तो कोई परवाह नहीं, हमने तो गलत काम किया।
मैंने आपको बताया, देखिए आप उसमें से खारिज नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपके बारे में भी जरदारी साहब ने ये कहा है कि आप भी उनकी गिरफ्तारी से परेशान है।
अच्छा,
जब 22 करोड़ आवाम की बात करते हैं तो आप 22 करोड़ लोगों में माइनस नहीं है कि आप ये समझ जाए कि आप टोरंटो में बैठकर वो लोगों से अलग हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा।
इसहाक डार साहब का क्या व्यूज है साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले क्यों नहीं कर रहा है बरतानिया,
इन्होंने बरतानिया के साथ बड़े जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इनके जो वजीर खारजा हमारे शाह कुरैशी साहब, इन्होंने मुसलसल कोशिश की है कि मुल्जिमों की हवालगी का एक एग्रीमेंट हो जाए, کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا میوزیم ہے جو برطانیہ کو مطلوب ہے تو ہم اس کو دے دیں، اگر پاکستان کے میوزیم جو ہیں برطانیہ میں رہ رہے ہیں سیاسی پناہ لی ہوئی ہے یا ویسے ہی رہ رہے ہیں تو پاکستان جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب رہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ شاید انہوں نے اب ایک دو دن پہلے پولیٹیکل اسائلم کے لیے سائن درخواست بھی ان کو کر دی ہے برطانیہ کو. برطانیہ میں جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہے تو برطانیہ کے جو ان کے ہم منصب ہے جو برطانوی وزیر وزارت خارجہ ہے فارن افیئر کی جو سیکٹری ہے تو ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان میں اس کے ساتھ اگر یہ ہم معاہدہ کر لیں گے تو اس معاہدے کا یہ سیاسی استعمال کریں گے. تو یہ لوگوں کو ہم سے لے کر جیسے کہ یہ اسحاق ڈار کو ہم سے مانگ رہے ہیں تو اسحاق ڈار کو اگر ہم ان کے حوالے کر دیں تو ان سے کہیں ان کو خدشہ ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان لے جا کر کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے. تو یہ اس لیے کیونکہ برطانیہ تو انسانی حقوق کے بارے میں ساری دنیا میں سرگرم رہتا ہے، پاکستان میں بھی بہت انوالو رہتا ہے، برطانیہ ان ملکوں میں شامل ہے جن کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں سزا موت کا قانون نہیں ہونا چاہیے، یہ سزا نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی لگے رہیں گے مذاکرات کرتے رہیں گے ہو جائیں گے کوئی اگریمنٹ کرنے میں، لیکن جو برطانوی وزیر نے ان سے جو بات کی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہ وزیر سابق وزیر خزانہ اور نواز شریف کو جو سمجھے ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کو یہ آسانی سے پاکستان میں لے آئیں گے، یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مخالفین کے ساتھ جو سیاسی مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے اس سے بہرحال دنیا واقف ہے ماضی میں کیا ہوتا رہا بھٹو کی پھانسی سے لے کے اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا یہ ساری چیزیں ہیں. تو حیدرآباد میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے یونائٹیڈ نیشنز اس نے آج پاکستان کو نان فیملی اسٹیشن کے درجے سے نکال کر فیملی اسٹیشن کا درجہ دے دیا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے. جو سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں یا اس قسم کے امن و امان کے مسائل ہوتے ہیں تو دوسرے ممالک جو ہے وہ وہاں پر اپنے شہریوں کو جانے سے منع کر دیتے ہیں اور اپنے جو ان کا سفارتی عملہ ہوتا ہے ان کو کہ جناب ملازمین جو ہے وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکیں گے. تو اب اقوام متحدہ کا جو نیا ایک اعلان ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تو 14 جون سے یہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. یہ انٹرنیشنل سول سروس کمیشن کے چیئرمین کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، خط لکھا گیا ہے ملیہ لودھی صاحبہ کو اور انہیں بتایا گیا کا سٹیٹس چینج کر دیا گیا ہے اور اب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک کا درجہ اختیار کر گیا ہے. دنیا سے کہہ دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ پاکستان میں جا سکتے ہیں.
کیا بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے سر،
ایک اچھی خبر.
ٹریول وارننگ جو ہے وہ کینیڈا کی طرف سے بھی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی پاکستان میں جو کینیڈا کے سفیر ہیں ان سے، کونسلر جنرل جو ہے وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان سے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ بھائی کس طرح کیوں پاکستان میں، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان میں رہتی ہیں کتنے سالوں سے، اسلام آباد کو چھوڑ کے آپ ہر جگہ ٹریول کرتی ہیں، کیا آپ کو پرسنلی کوئی ایسی انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی پرسنل انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اور میں تو اسلام آباد میں اچھا خاصا گھومتی پھرتی ہوں، کوئی ہمارے پرابلم نہیں ہے. کچھ علاقے ہیں تو وہ کچھ علاقے تو بھائی امریکہ میں بھی ہیں کچھ علاقے جہاں پر آپ شام کو آپ جیسی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ آپ واپس خیر خیریت سے واپس نہیں آئیں گے. तो ये तो कुछ इलाके तो दुनिया भर में हर मुल्क में हो सकते हैं, तो इसलिए उन उनकी वजह से तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना कि भाई आपने पूरे
माजी के मुकाबले में आज पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई पुरसकून मुल्क है और यहाँ पर कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है दुनिया को। यहाँ पर जो टूरिज्म के फ्लो के लिए इकदाम की कर रही है मौजूदा हुकूमत और इस सारी सूरत हाल को पुरमन बनाने के लिए इसको पाकिस्तान की फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, सैकड़ों की तादाद में फौज के जवान जो है वो शहीद हुए हैं और बेशुमार इलाके क्लियर कराए गए हैं और तालिबान से और दहशतगर्दों से उनको पाक किया गया, साफ किया गया है और से उनको मार दिया गया है या उनको अफगानिस्तान के सरहदों से दूसरी तरफ भेज दिया गया है पाकिस्तान बाहर। हाल इस वक्त मैं इस साल देख रहा हूँ, मेरे कई सालों के बाद पाकिस्तान में एक मौका है कि मेरे जानने वाला हर दूसरा खानदान जो है उसके बारे में मुझे पता चलता है, इंक्लूडिंग माय फैमिली। इस वक्त मेरे अपनी फैमिली जो है वो इस वक्त नारायण और कारगान में गई हुई है और आज मेरे ही दोस्तों का एक टोला जिनकी तादाद 22 है और मुझे भी वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चले, तो कल वो शहर के लिए जा रहे हैं इन इलाकों में जो दहशतगर्दों की पनाहगाह समझे जाते थे। तो ये सुनते हैं जो है,
मैंने उनको यही कहा था कि सर मैं अभी 2 साल पहले पाकिस्तान गया था और मेरी पूरी फैमिली जो है कराची में और लाहौर में हम खूब घूमे और हमें तो कोई खतरा नहीं हुआ, हम तो रात को 2-2 बजे भी वहाँ घूमते थे, हमें कोई खतरा पाकिस्तान में नहीं आया। तो आप लोग ये जो ट्रैवल वार्निंग है आपके कैनेडियंस के लिए, मैं दुनिया भर की तो बात नहीं करता हूँ मगर क्योंकि हम कैनेडियन हैं और कनाडा में रहते हैं तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि कनाडा में रहते हुए आप ये चीज़ जो है ट्रैवल वार्निंग जो है इसको ख़त्म करें, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो आप लोग क्यों इस चीज ट्रैवल वार्निंग को खत्म नहीं करते। कावर साहब हम
करनी पड़ेगी ना, इनको
अब तो खत्म करनी पड़ेगी,
फैसला हुआ है अब तो कौमे मुत्तहिदा का कोई शोबा है उसका तहफ्फुज और सलामती के कोई अंडर सेक्रेटरी जनरल है तो ये
हम ज्यादा कॉल्स नहीं ले हम ज्यादा कॉल्स नहीं ले सकेंगे क्योंकि आज मैंने कावर नईम हाशमी को बड़ी देर से लिया, ये मेरा फॉल्ट था, हम गुलगुले की बातें कर रहे थे पाकिस्तान में और भेड़ बोटी की बात कर रहे थे तो इसलिए।
लेकिन हमने माज भाई कितनी अच्छी अच्छी खबरें दी आज सारी, कावर नईम हाशमी आज आपने खबरें भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव सुनाई है सारी की सारी, हमारे लिसनर्स भी खुश होंगे,
हमारे रिश्ते तो हमेशा खुश रहते हैं, कावर नईम हाशमी से खासतौर से बहुत खुश हैं वो तो हम साहब अब कावर भाई हम ज़्यादा कॉल्स नहीं लेंगे मगर थोड़ी सी कॉल्स क्योंकि सारी मेरी लाइनें 6 की 6 जल रही हैं इस वक्त और मैं 1-2 कॉल्स लूँगा उसके फौरी बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी वालेकुम सलाम भाई साहब, आदि कैसे हो?
अलीजा साहब कैसे हो आप?
अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, मैं आशमी साहब की गुफ्तगू को सुन रहा था, इनसे मेरे 2 सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लूँ।
$5 एक सवाल का।
सर मैं आपको 7 साल
सबसे पहली कॉल है, देखने कम रेट है।
$15 का नोट दूंगा, आप एक लूनी मुझे वापस कर दीजिए।
अच्छी बात, डन डील, डील डन है सर,
सारे साल वापस कर दे और आप देंगे।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
अच्छा जी जी आशमी साहब, मेरा सर आपसे, आपने भी अभी फरमाया कि वो एहतसाब की वजह से हमारा यहाँ तरक्की का सफर रुक गया। मैं पहला सवाल मेरा
सर, मैं मेरी करेक्शन है कि एहतसाब के हम हक में है, पूरी कौम हक में थी, अमल 1 साल तक तातुल का शिकार है, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, हम ये बात कर रहे हैं।
जी जी सर, नतीजा बरामद तो होगा ना जब आपको, तो अभी कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग है, चल रहे हैं, रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है, आप मुझसे
बेहतर आजादी से घूम रहे हैं।
हाँ जी, इट्स अ प्रोसेस, ये है, तो वो जो आजादी से अगर घूम रहे हैं तो वो उनके अभी कई लोग हम जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे कंपेन भी चला रहे हैं ना कि नवाज शरीफ को जो अंदर है उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि 3 दफा वजीर आजम रहे। मैं और आप आज तक नवाज शरीफ का नाम इज्जत से इसीलिए लेते हैं ना, यही सोच के कि 3 दफा वजीर आजम रहा, हम ये तो नहीं कहते कि उसने 3 दफा हमें लूटा, ठीक है। बेनजीर, बेनजीर का आप, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा सुनता हूँ, आपने कई दफा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, तो आप मुझे बता दें कि बेनजीर ने कौम के लिए क्या किया? बेनजीर की जो भी स्ट्रगल थी दैट वॉज फॉर हर ओन सेल्फ, not for the people of Pakistan. You know that. You, I know that. अगर मैं और आप उस बात को मानते नहीं तो वो that's a different story. लेकिन मैंने आप ही की चले आप जो भी उसको नाम दे लें आपने कहा जी एहतसाब जो हो रहा है उसकी वजह से हमारा तरक्की का सफर रुक गया. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि तरक्की का क्राइटेरिया आपकी नजर में खावर नहीं हाशमी की नजर में क्या है. इज इट जस्ट बिल्डिंग द ब्रिजेज एंड वो क्या उसको बोलते हैं जो आपके अंडर पास